Nothing. శాశ్వతమత్రమేయమనుఘం నిర్వాణి శాంతిప్రదం బ్రహ్మ శంభు ఫణీంద్రసేవ్యమనిషం వేదాంత వేద్యం రామాఖ్యం జగదీశ్వరం సురగురుం మాయామనుష్యం హరిం వందేహం కరుణాకరం రఘువరం శరణయో కర్ణికారం వివ్రతవాస కనక కపిశం వైజయంతీం చ మాలా రంధ్రాన్ వేణోరధర సుధయా పూరయన్ వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్గీతకీర్తి సచ్చిదానందరూపాయ విశ్వోత్పత్త్యాదిహేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయం నమః యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయణ విరహకాతరయా త్రేతి తన్మయుతయా సర్వభినేదు తం సర్వభూతహృదయం మునిమానతోష్మి. स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज, श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, आदरणीय श्री विष्णुहरि डालमिया जी, जयपुरिया जी, खेतान जी, कानोड़िया जी, सम उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान बालकृष्ण की सख्य रस की जो दिव्य लीला है, ग्वाल बालों के साथ स्वयं भी आनंद लेते हैं और ग्वाल बालों को आनंद देते हैं। भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी जब उनके भक्त आनंदित होते हैं, उनको आनंदित करके और भी आनंदित होते हैं। भगवान जो लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, भक्तों को तो रस आता ही है, भगवान को भी आता है। अगर भगवान को रस नहीं आता तो वो डांट खाने के बाद भी, गाली खाने के बाद भी माखन चोरी नहीं करते, उनको स्वयं आनंद आता है। मिट्टी खा लिया, मैया ने पूछा मिट्टी खाई, बोले नहीं खाई, और इतना निश्चिंत होके बोलते थे कि सामने वाले को संदेह भी ना हुए कि झूठ बोल रहे। क्यों डालबिया जी? ये अवतार ऐसा विलक्षण था। नाहम भक्षितवान अम्ब, क्रांतिकारी जवाब था, सर्वे मिथ्या भी संशिना, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, केवल मैं ही सच बोल रहा हूं। आप कल्पना कर सकते कितना रस था उस बाल चापल्य में, और उसमें आनंद आता था, और उसमें भक्ता लोग खींचतान करते, नहीं भगवान तो झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बोले, उसकी व्याख्या बदल देते हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं अगर भगवान कृष्ण सच सच ही बोलते तो यशोदा मैया को इतना आनंद नहीं आता, कभी झूठ बोलते थे, कभी सच बोलते थे, कभी नटखट हो जाते थे, तभी मैया को आनंद आता था। उसी प्रकार से भगवान को जिसका हृदय लगता है ना कि बड़ा निर्मल है, निर्मल माने सरल, हमको आपको देखना चाहिए, गोपियों के हृदय को भगवान छीन लेते हैं, चित्त को चुराते हैं, और दूसरा पक्ष है सुखदेव जी के हृदय को भगवान छीन लेते हैं। भागवत में दोनों के लिए एक ही वर्णन है। भागवत के अनुसार जो स्तर सुखदेव जी महाराज का है वही स्तर ग्वाल बालों का और गोपियों का है। अगर सुखदेव जी कहते हैं परिनिष्ठितोपनिर्गुणे उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं तो ब्रह्मनिष्ठ के आनंद में मस्त रहता था, जंगल में विचरण करता था, लेकिन इस श्री कृष्ण की मधुर कथाओं ने, उनकी मधुर लीलाओं ने मेरे चित्त को छीन लिया, चुरा लिया। और गोपियां भी वही कहती गत्या ललित योदार हास लीला वो लोक नहीं ही माधव्या गिरा हृत धिया कथम तम विस्मरा मही। आश्चर्य होता अगर हम ध्यान से भागवत पढ़ें तो जो सुखदेव जी की दशा है वही दशा गोपियों की। सुखदेव जी भी कहते हैं मेरे चित्त को श्री कृष्ण ने छीन लिया है, और गोपियां भी कहती हैं मेरे चित्त को श्री कृष्ण ने छीन लिया है। अर्थात एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का चित्त जितना निर्मल होता है, जितना मधुर होता है, उतना ही प्रेम रूपी जो भक्ति है, प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, वो अगर हमारे आपके जीवन में आ जाती है तो उस भक्त का चित्त भी उतना ही मधुर होता है और निर्मल होता है। भगवान सबका चित्त तो नहीं छीनते, क्यों हमारा आपका छीनते? रोज शिकायत करते हैं साधा लोग, महाराज मन नहीं लगता भगवान के जप में, ध्यान में। जब जप करने बैठते हैं तो मन चारों तरफ घूमता है, भगवान ने नहीं छीना तभी तो वो घूमता है ना। और भगवान ने क्यों नहीं छीना? क्योंकि अभी छीनने लायक हुआ नहीं, निर्मल नहीं हुआ, सरल नहीं हुआ। चलो निर्मल तो थोड़ा बहुत स्वयं भी कर लेते हो, प्रविष्ट करण रंधेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। बोले भगवान श्रवण के रास्ते अंदर प्रवेश करते हैं, और तुम्हारा हृदय अगर थोड़ा बहुत निर्मल ना भी होए, थोड़ा गंदा भी होए, तो सफाई भी कर लेते और सफाई करके बैठ जाते तो फिर प्रश्न उठता है तो फिर हमारे चित्त में क्यों नहीं बैठ रहे? आप ईमानदारी से देखो कि आप बैठाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर वो चाहे कि मैं बैठ जाऊं तुम्हारे चित्त में, मैं बैठ जाऊं केवल मेरा ही कब्जा हो जाए, ऐसा आप लोग चाहते हैं? चाहते तो हैं लेकिन कब्जा नहीं होने देना चाहते। 100% में 2-4% भगवान को चाहते हैं, बाकी 90-95% संसार को चाहते हैं। भगवान देखते हैं अभी यहाँ मेरी कोई खास जरूरत नहीं है, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिल जाए तो भी ठीक है। हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने कहा महाराज भगवान का दर्शन कैसे होता है? गुरु जी बोले ये बात तुमको तभी ध्यान आती जब मैं मिलता हूँ या बाद में भी कभी ध्यान आती है? मैं मिलता हूँ तब तो तू हमेशा पूछता है भगवान का दर्शन कर, मतलब साधु मिल गया कोई हो तो पूछ लिया भगवान कैसे मिलते हैं, लेकिन बाद में क्या मन में भी व्याकुलता रहती है क्या कि भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे दर्शन होंगे? और नहीं रहती, इसलिए भगवान जानते हैं अभी ये मस्त है, खिलौने में खेल रहा है तो उसको खिलौने में खेलने दो, ये खिलौने ही तो है सारा संसार, बेटा है, पौत्र है, संपत्ति है, परिवार है, व्यापार है। और हमारे मारवाड़ी परिवारों में तो महाराज पुत्र से ज्यादा पौत्र प्रिय होता है, और पौत्र से ज्यादा प्रपौत्र, हाँ ग्रेट ग्रैंडसन, तो उसको महाराज प्रपौत्र हो जाए तो कहते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ जाती है, क्यों जयपुरिया जी सही है ना, सोने की सीढ़ी चढ़ते प्रपौत्र अगर हो जाए। और ऐसे ऐसे कहावत बना रखे है, बोलते हैं मूल से ज्यादा प्यारा तो ब्याज ही होता है ना, माने मूल है पुत्र और ब्याज है पौत्र। तो इसलिए भगवान देखते हैं कि अभी तो खिलौनों में लगा हुआ है, अभी मेरी जरूरत नहीं है, नहीं तो भगवान तो चाहते हैं, मन चाहते हैं, मन और कुछ नहीं चाहते, आपका मन चाहते हैं। भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना दी है, भगवान कहते हैं दुनिया जो चाहती है वो दुनिया को दे दो और मैं जो चाहता हूँ मेरे को दे दो, झगड़े की समस्या ही नहीं, ना घर छोड़ने की जरूरत है ना परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप अगर किसी मित्र को या परिवार को कह दो कि मैं मन से तुम्हारा पूरा ध्यान रखता हूँ लेकिन ना पैसा खर्च करूँगा ना समय दूंगा, तो वो खुश होगा कि नाराज होगा, क्यों भाई? और अगर आप पैसा पूरा दे दो, समय दे दो, मन दो कि मत दो, तो उसको खुशी है कि नाराजगी है? खुशी है। तो दुनिया आपका मन नहीं चाहती, दुनिया आपका पैसा चाहती है, दुनिया आपका समय चाहती है, दुनिया आपकी शक्ति चाहती है, और भगवान? भगवान आपका पैसा नहीं चाहते क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में, भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपका मन चाहिए। कितना सुंदर विभाग है, जो भगवान को चाहिए वो भगवान को दे दो और जो दुनिया को चाहिए वो दुनिया को दे दो, समस्या कहाँ है? घर परिवार छोड़ने की जरूरत कहाँ है? लेकिन हम नहीं वो कर पाते, भगवान को जो ना चाहिए वो तो भगवान को देते रहते हैं, भोग लगा देते हैं, थोड़ा ज्वेलरी बनवा देते हैं, और पूजा के लिए भगवान की पूजा स्वयं करते हैं कि पंडित जी करते हैं? टाइम नहीं है, कोई मिनिस्टर आ जाए, इंस्पेक्टर आ जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ जाए तो 10-10 20-20 घंटा टाइम निकल आएगा, और भगवान की पूजा के लिए पंडित जी कर लेना ना, आज जल्दी हमको। भगवान भी समझते हैं मेरे को तो पंडित जी के भरोसे छोड़ रखा है, स्वयं तो इंस्पेक्टर के पीछे घूम रहा है और मेरे को पंडित जी के भरोसे छोड़ रखा है, तो ठीक है जैसे आप पूजा करते हैं वैसे भगवान कृपा करते, फिर शिकायत क्यों करते हैं कि भगवान कुछ नहीं कर रहे? भगवान तो उसके अनुसार बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप जो चाहते हैं, भगवान जो चाहते हैं भगवान को दीजिए, दुनिया आपका मन नहीं चाहती, दुनिया को आपकी संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, वो नहीं देंगे। आप कितना भी कहें मन से आपके साथ हैं, बोले बेवकूफ मत बनाओ, मन से साथ होने का मतलब क्या, कुछ करो हमारे लिए तब तो हम समझे मन से साथ, भगवान को केवल मन चाहिए। तो इन ग्वाल बालों के लिए भगवान इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि ग्वाल बालों ने मन दिया है, ग्वाल बालों ने अपनी बुद्धि दी है। भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं अर्जुन से, मई एव मन अधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय निवशिष्यश मई एव अत, 12वें अध्याय में भक्ति योग में भगवान कहते हैं अर्जुन से, मेरे में ही मन समर्पित कर दो, मेरे में ही बुद्धि समर्पित कर दो, इसके बाद तुम मेरे में ही निवास करोगे, अर्थात सर्वत्र तुमको मेरा ही दर्शन होने लग जाएगा। वहां उपदेश दिया और ग्वाल बालों के जीवन में वो दिखाई दे रहा है। इसलिए भगवान ग्वाल बालों की रक्षा के लिए, क्या ग्वाल बालों ने पुकारा था जब अघासुर के मुख में ग्वाल बाल चले गए, क्या उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा था कि बचाओ बचाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, पुकारा था? पुकारा था या बिना पुकारे भगवान चले गए थे? क्यों भाई? बिना पुकारे। और हम और आप रोज मंदिर में पुकारते रहते या अपने घर के मंदिर में पुकारते रहते, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, भगवान आप कहाँ चले गए हो? चले तो कहीं नहीं गए, लेकिन वो आपसे घबराते, आप कहेंगे हमसे, आपसे घबराते हैं भगवान, क्यों घबराते? मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा, आप 11 रुपए 21 रुपया 51 रुपया का प्रसाद लगाओगे और भगवान से प्रार्थना करोगे क्या, हमारी फैक्ट्री ठीक रखना, हमारी तबीयत ठीक रखना, हमारा बेटा हमारी बात मानता रहे ये ध्यान रखना, पत्नी हमारी बात मानता रहे ये ध्यान रखना? भगवान सोचते हैं कि 51 रुपया में बिना दर्शन दिए इतना मांग रहा है, अगर मैं सामने आ गया तो आफत ही आ जाएगी, इसलिए वो नहीं प्रकट होते। माने क्या भगवान को हिसाब नहीं आता कि तुम 51 रुपए में क्या क्या मांग रहे हो? जो दुनिया में भी पॉसिबल नहीं है, व्यवहार में भी पॉसिबल नहीं है, वो आप भगवान को मांग रहे हो। 51 रुपया तो मैक्सिमम, मैंने तो 11 रुपये चढ़ा के ही सब मांग लेते हा? भगवान इसलिए सामने नहीं आते, इसलिए वो जानते हैं इनसे थोड़ा दूर रहो, छिप के ही रहो। और सच बात बताइए, जब जब भगवान आए, ठीक है वो भगवान थे, लेकिन राम जी ने जब अवतार लिया, कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार काल से लेकर के स्वधाम गमन तक मानवीय दृष्टि से विचार करें तो भगवान बहुत शांति से रहे कि अव्यवस्था में रहे? क्यों? राम जी का जीवन आप देख लें, वनवास जाना पड़ा और अंत में जानकी जी का परित्याग करके बहुत वियोग की दशा में रहना पड़ा। और कृष्ण जी के तो अवतार के पहले ही उनके माता पिता को जेल में डाल दिया गया, उनका अवतार ही जेल में हुआ, और जन्म लेते ही जन्मोत्सव भी नहीं मनाया गया, मथुरा में गोकुल भागना पड़ा। गोकुल में जन्मोत्सव मनाया गया, 6 दिन की थी जब पूतना आ गई विष पिलाने के लिए। अंत में अपने परिवार का अपने हाथ से संहार करना पड़ा श्री कृष्ण को, यदुवंश का संहार। तो इस जब धराधाम पे भगवान आते हैं तो शांति से हम और आप रहने देते हैं कि नहीं रहने देते उनको? हम ही आप तो रहते हैं ना, हम ही आप मतलब मनुष्य ही तो रहता है ना। जब मथुरा से भगवान कृष्ण को भागने की दशा आई, स्थिति आई, तो भागवत में एक श्लोक है, भगवान विश्वकर्मा से कहते हैं, तस्माद अद्य विधास्यामो दुर्गम दुपद दुर्गमम। विश्वकर्मा, अब समुद्र के बीच में ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां ये दो पैर वाला व्यक्ति न पहुंच सके। भागवत में श्लोक है, माने भगवान अगर डरते हैं तो किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? हमें आपसे भगवान डरते हैं? दो पैर वाला स्पष्ट लिखा है, कोई बाहर का श्लोक नहीं, भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद में उठा के देख लेना। दुपद दुर्गमम, दो पैर वाला जो मनुष्य है ये जहां न पहुंचे ऐसी जगह द्वारिका नगरी का निर्माण करो। और उस समय द्वारिका के चारों तरफ समुद्र था, कोई ब्रिज वगैरह नहीं था, आसमान से ही विमानों में जाते थे, वहीं से आते थे। बहुत दिनों तक तो लोगों को पता ही नहीं लगा कि श्री कृष्ण बलराम द्वारिका में रह रहे, तभी वो शांति से रह पाए अभिप्राय। तो भगवान चाहते हैं सच्चाई। मैं कह रहा था ग्वाल बालों ने पुकारा नहीं था कि हम आपत्ति में आप पधारो, रक्षा करो, हम पुकारते हैं तो भी नहीं आते, उनके यहां बिना पुकारे चले गए, फर्क क्या है? वास्तव में हम पुकारते भी एक तो आपत्ति के समय ही है, चलो कोई बात नहीं, आपत्ति में भी ईमानदारी से नहीं पुकारते, भगवान को भी पुकार लेते हैं, पड़ोसी को भी पुकार लेते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को भी बुला लेते हैं। भगवान सोचते हैं अभी तो इसके पास बहुत लोग हैं, अभी मैं अकेला नहीं, अनन्य भावे नहीं पुकारते, भगवान जानते हैं अभी तो बहुत लोग हैं ना। गुरुजी सुनाते थे, बोले एक बार भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन करते हुए अचानक उठ के भागे, रुक्मणी जी सभी पटरानियां बैठी भोजन करा रही थी, और दरवाजे तक गए महल के और वापस आ गए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीला है, एक तो भोजन के बीच से उठ के भागे, और भागे भी फिर भी बीच से लौट के आ गए, गए भी नहीं। बोले क्या बताऊं, एक मेरा भक्त था, उसके पीछे कुछ दुष्ट लोग डंडा लेके जा रहे थे मारने के लिए, मैं दौड़ा बचाने के लिए। बोले फिर महाराज बीच से क्यों लौट आए, गए नहीं आप? बोले वो थोड़ी देर बाद मैं दरवाजे तक गया तो देखा वो भक्त ने भी पत्थर उठा लिया था दुष्ट को मारने के लिए, मैं सोचा अभी तो आपस में ही इनका काम चल रहा है, मेरी जरूरत नहीं है इनको, मैं लौट आया। तो माने आपको अपना भरोसा है, परिवार वालों का भरोसा है, पुलिस का भरोसा है, मित्र का भरोसा है, तब तक भगवान देखते हैं अभी ठीक है। हाँ, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, हाँ जब सारे आस भरोसे टूट जाते हैं तब भगवान आ जाते हैं। द्रौपदी के प्रसंग में भी यही हुआ, गजेंद्र के प्रसंग में भी यही, वही शरणागति, वही सरेंडर है। हाँ, तो भगवान ग्वाल बालों के लिए अपने से चले जाते उनकी रक्षा के लिए, और ग्वाल बालों की रक्षा करके बाहर आ जाते। बाहर भगवान के श्री विग्रह में जो अघासुर की दिव्य ज्योति थी वो प्रवेश कर जाती है, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, भगवान में समा जाता है। और उसके लिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज, क्यों उसको मुक्ति मिल गई, वो कहते हैं
सकृत यदंग प्रतिमांतरहिता मनोमयी भगवतीं ददौ गतिं सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिः व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः।
सकृत, सकृत माने एक बार, एक बार भी अगर किसी साधक के मन में मनोमयी माने भावमयी, किसी साधक के मन में एक बार भी अगर ठीक ठीक भावमयी प्रतिमा का प्राकट्य हो जाए, ये जो दर्शन की विधा है ना भगवान के दर्शन की, प्रारंभ में भाव में दर्शन होता है, फिर स्वप्न दर्शन होता है, और स्वप्न दर्शन जब बार बार होने लग जाए तो समझ लेना प्रत्यक्ष दर्शन का भी समय आने वाला है, वो उसका क्रम है। यहाँ पर लिखा है प्रारंभ मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम मनोमयी, एक बार भावमयी प्रतिमा भी अगर किसी के हृदय में प्रकट हो जाती है फिर उसको संसार का बंधन नहीं होता है। इतनी महिमा है भगवान के दर्शन की, भावमयी प्रतिमा की। बोले फिर अघासुर का उद्धार कैसे हुआ, बोले अगर भावमयी प्रतिमा व्यक्ति का उद्धार कर सकती है तो साक्षात श्री कृष्ण जिसके अंदर प्रवेश कर गए उसके उद्धार में बाधा कहां से आएगी। भले किसी भी भाव से गए, उद्धार के भाव से गए, लेकिन वो कैसे गए। टीकाकार कहते हैं देखो ये संत और भक्त की महिमा, अगर ग्वाल बाल अघासुर के अंदर नहीं गए होते तो क्या श्री कृष्ण जाते, नहीं जाते। संत किसी भी भाव से आपको मिल जाए आपको भगवान से मिला देगा, किसी भी भाव से मिल जाए, प्रेम से मिले तो कहना ही क्या है। हाँ झगड़े से भी मिल जाए, हनुमान जी कालनेमी को कैसे मिले भाई, कालनेमी तो हनुमान जी को रोकना चाहता था ना, बड़ा भारी उपदेश करने वाला था, बहुत माला लिए था, लाल कपड़ा पहना था, आश्रम बनाया हुआ था और हनुमान जी को कथा सुना रहा था, जो सबसे बड़े वक्ता राम कथा के, श्रोता भी सबसे बड़ा। हनुमान जी समझ गए कि ये थोड़ा लगता है गड़बड़ वक्ता है। हाँ गड़बड़ क्यों, गड़बड़ क्यों है, चमत्कार पूर्ण कथा सुना रहे थे। यहाँ भय मैं देखो भाई जी, हाँ यहाँ बैठे हुआ मैं देख रहा हूँ क्या ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकारी, मेरे को मालूम है मेरे पास ज्ञान की दृष्टि जागृत हो गई है। जैसे आजकल जगह जगह लिखा रहता है 3 दिन में कुंडलिनी जागरण, मैं अभी स्वामी जी से वर्चा कर रहा था 3 दिन, हाँ कुंडलिनी जैसे हंसी खेल, मैंने ऐसे आपको पकड़ लेंगे और कुंडलिनी को ऊपर चढ़ा देंगे जग जाएगी। हाँ बुरा मत मानना अगर कोई यहाँ बैठे हो, लेकिन ये बेवकूफ बनने के लिए इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी एजुकेशन से, जो हमारा धर्म को अलग कर दिया गया ना। कुछ समय पहले एक बाबा जी और आते थे, जहाँ तो लोग टिकट लेकर के हाल फुल रहता था, टिकट लेके और उनके समाधान कृपा के जो होते थे, समझ गए होंगे आप लोग, आज गुलाब जामुन अकेले खाया कि बांट के खाया आज समोसा बांट देना कृपा प्रारंभ हो जाएगी। कल्पना आप कर सकते हैं, हमारा एजुकेटेड समाज 2,000 रुपये का टिकट लेके हाल में वहां सुनने जा रहा है। उनका दोष नहीं है, हमारी एजुकेशन से धर्म जीरो है, धर्म के विषय में कुछ जानते नहीं, जब नहीं जानते हैं तो कहीं भी फंस जाते, कहीं भी बेवकूफ बन जाते हैं। तो महाराज तो अपने प्रसंग पे आ जाए, भगवान जो है, भगवान के जब स्वयं चले गए तो क्यों चले गए, बोले संत के एक माध्यम से, हनुमान जी को कथा सुना रहा था, क्यों चमत्कार वाली कथा, मैं जानता हूँ यहाँ बैठे बैठे राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम जी की विजय होगी इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी ने पूछा कि आप कैसे जानते, आज का श्रोता होता तो बहुत सतर्क होके सुनने लग जाता, अरे ये भविष्य की बात बता रहे हैं, जरूर इनसे बाद में मिलेंगे, हम पूछेंगे हमारा भविष्य क्या है। हा? ये भविष्य जानने की जिज्ञासा, भगवान से ज्यादा जिज्ञासा भविष्य जानने की। मैं एक बार कलकत्ता एयरपोर्ट से आ रहा था दिल्ली, 1 साल पहले की बात है, गेट पे जो सिक्योरिटी में पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, वो 6-7 लोग छोड़ने आए थे एयरपोर्ट, वो सब टिकट लेके अंदर आ गए एयरपोर्ट में, वहां टिकट लेके अंदर जाने देते एयरपोर्ट टिकट। और देखा ये महात्मा के साथ 6-7 लोग पीछे हैं, तो कुछ तो होगा ये महात्मा में। और ड्यूटी पे दूसरे को लगाया, मेरे पास आ गया, ड्यूटी छोड़ के आ गया। बोले बाबा जी मेरा भविष्य बताओ क्या होगा। मैंने कहा भाई मेरे को अपने ही भविष्य नहीं मालूम है क्या होगा। मैं तुम्हारा भविष्य कैसे बताऊं? नहीं नहीं नहीं, आप जरूर जानते हैं कुछ, नहीं तो इतने लोग आपके पीछे कैसे। माने ये भी एक पैमाना, अगर 1000 बेवकूफ लोग किसी के पीछे चल रहे हैं तो उसे धमात्मा है, ये कोई पैमाना तो नहीं होता है। और बहुत पीछे लगा, फिर बहुत उसको समझाया तो गया। और एक विनोद की बात हुई मेरे साथ, कलकत्ता का एक भक्त था, बड़ा विनोदी है अभी है वो। तो बोले स्वामी जी आपने क्यों कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता, ज्योतिष वगैरह भविष्य बताना तो मैं क्यों कह दूं कि मैं जानता हूं। बोले आप कह देते मेरा शिष्य जानता है, इससे पूछ लो। तो मैंने कहा तू जानता है क्या? बोले जानता तो नहीं हूं। तो मैंने कहा अगर नहीं जानता तो मैं कह देता तो तू क्या करता? बोले मैं उसको कोई पाठ या पूजा बता देता 1 साल के लिए, और अगर सफल हो जाता तो मैं सिद्ध हो जाता, और नहीं सफल होता तो मैं कह देता तूने ठीक से नहीं किया। मेरे को लगा ऐसे लोग ही तो बेवकूफ बना सकते। और क्या लॉजिक उसने दिया। बोले आपने क्यों मना कर दिया? मैंने जानता, आप अपना नाम ने मेरा नाम बता देते, ये जानता, मेरे शिष्य से पूछो ये जानता है। बोले मैं कोई पूजा बता देता, सफल हो जाता तो सिद्धि थी, नहीं सफल होता तो मैं अपने ऊपर नहीं उसी को बोल देता तूने ठीक से नहीं किया होगा, मैं क्या करूं उसके लिए। अभिप्राय क्या है? तो ये जो चमत्कार ज्यादा चक्कर में रहते हैं ना, कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज आपका आशीर्वाद लेके गए थे, आपकी कृपा हो गई, ये काम हो गया। ऐसे शिष्य से मैं थोड़ा डर जाता हूं। क्यों? जब अगली बार काम नहीं होगा तब तब तो गुरु जी गए काम से, फिर इस बार काम हो गया तो गुरु जी सिद्ध हो गए, और नहीं काम हुआ अरे गुरु जी ऐसे ही है, कुछ होता जाता नहीं। ये जो चमत्कार के पीछे घूमते हैं ना लोग। हमारे गुरु जी से एक बार, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से अहमदाबाद में प्रवचन होते थे, रश्मि सौरभ करके थे जिनके घर वो ठहरते थे। तो 4-6 साल के बाद वो थोड़ा नजदीक हो गए काफी, तो गुरु जी से कहा महाराज ये सारे महात्मा लोग कुछ ना कुछ रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, आप कुछ नहीं दिखाते। गुरु जी ने कहा रश्मि 6 साल पहले जब तुम मेरे से मिली थी तब तुम्हारे मन की दशा क्या थी और आज क्या है? उसने विचार किया, बोले महाराज उस समय में तो छोटी छोटी बातों में मैं चिढ़ जाती थी, मैं इरिटेट हो जाती थी, झगड़ जाती थी, आज आपका सत्संग करते करते ये दशा हो गई है, छोटी मोटी बातों का प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ता है। गुरु जी ने कहा रश्मि सबसे बड़ा चमत्कार यही है, मन तुम्हारा ऐसा हो गया कि संसार की बातों का प्रभाव न पड़े। अरे चमत्कार कितनी बार देखोगी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो तो लालसा बढ़ती जाएगी। अब बुखार हो गया तो भी चमत्कार हो जाए, बुखार ठीक, गुरु जी कहां तक चमत्कार करेंगे? तो जो चमत्कार, हनुमान जी को चमत्कार की कथा सुना रहा था काल ने भी, हनुमान जी समझ गए कुछ गड़बड़ बाबा है। हनुमान जी बोले प्यास लगी है, कथा के बीच में आपको भी जल्दी प्यास नहीं लगती, हनुमान जी जैसे श्रोता को कथा के बीच में प्यास लग जाए ये बात समझ नहीं आती। मतलब वो कथा सुनना नहीं चाहते थे, अपमान भी नहीं करना चाहते थे, साधु वेश में था कालनेमी, वेश का आदर। कालनेमी इतना प्रेम दिखा रहा था, मेरे कमंडलू से जल पी लो, सन्यासी के कमंडलू का जल गृहस्थ ब्रह्मचारी बानप्रस्थ तीनों के लिए मना, नहीं पीना चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रेम मेरे कमंडलू से जल पी लो। हनुमान जी ने कहा इतने जल से मेरा काम होगा नहीं। तो बोले सरोवर से पी के आ जाओ, स्नान करके आना, जल्दी आना। हनुमान जी बोले क्यों वापस जल्दी क्यों बुला रहे हैं? बोले तुमको दीक्षा दूंगा जिससे जो ज्ञान दृष्टि मेरे पास है ना, वो थर्ड आई तुम्हारी भी खुल जाएगी, तीसरी आंख तुम्हारी भी खुल जाएगी। अब महाराज हनुमान जी समझ गए पक्का ढोंगी है, लेकिन अब क्या करना है, साधु वेश में क्या करें। हनुमान जी गए तो वहां मगरी ने पैर पकड़ लिया, उसका उद्धार हो गया। मगरी ने कहा मुनि न हो या निश्चर घोरा, माने हो सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी महाराज ये साधु नहीं है, घोर निशाचर है, सावधान रहिएगा। हनुमान जी समझ गए संदेह तो मेरे को पहले से ही था। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होके जा रहे, घोर निशाचर क्यों कहा? बोले अगर निशाचर निशाचर के वेश में हुए तो निशाचर, और निशाचर अगर सज्जन के वेश में आ जाए तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वो घोर निशाचर। मैंने एक बार गुरुजी से पूछा कि कलयुग में तो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली दुष्ट नहीं है जो सतयुग में हुए, त्रेता में हुए और द्वापर में हुए। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, द्वापर में महाराज जरासंध दंत वक्त्र कंस, ऐसा शक्तिशाली तो आज कोई नहीं। फिर भी मैंने कहा कि कलयुग के दुष्टों की निंदा ज्यादा क्यों? गुरु जी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया, बोले उन तीनों युगों के जो दुष्ट थे वो बाहर से भी दुष्ट थे, अंदर से भी दुष्ट थे। लोगों को आईडी प्रूफ तो था ना कि ये दुष्ट हैं। अब आप समझ गए होंगे कलयुग के दुष्टों की सबसे बड़ी समस्या यही कि आईडी नहीं है कि दुष्ट है कि सज्जन है। आप निश्चित ही नहीं कर सकते। सज्जनता का वेश बनाएंगे, सज्जनता का ढोंग रचेंगे और अंदर से गड़बड़ कर देंगे, वो ज्यादा खतरनाक। हनुमान जी आए, कालने में समझ गया लगता है, प्रभाव तो पड़ा कथा का। बोले बेटा दीक्षा दे दूं? हनुमान जी बोले नहीं गुरुदेव, पहले दक्षिणा ले लीजिए। अरे पहले दीक्षा होती है बाद में गुरु दक्षिणा होती है? बोले नहीं, ये तो मनुष्य का नियम है, मैं तो ठहरा बंदर, बंदर का काम हमेशा उल्टा होता है, मैं तो पहले गुरु दक्षिणा ही दूंगा। और सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगटे से मरती बारा, प्राण छोड़ते हुए राम राम कह करके प्राण छोड़ा, क्योंकि रावण के कहने से आया था काल देवी और उसका उद्धार हो गया। मैं कह रहा था अगर संत किसी भी माध्यम से जुड़ जाए, प्रेम से जुड़ जाए तो भी उद्धार, दुश्मनी से जुड़ जाए तो भी उद्धार। ये संत की महिमा, क्यों? संत जहां रहते हैं उनके पीछे पीछे वहां भगवान रहते हैं। वास्तव में जो संत महापुरुष होते हैं उनके साथ में ही ठाकुर रहते, भगवान रहते। अघासुर के अंदर भगवान कृष्ण क्यों गए? क्योंकि ग्वाल बाल गए, ग्वाल बालों के पीछे पीछे भगवान कृष्ण गए, उसका उद्धार कर दिया। अब महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये जो लीला हुई ना, लीला अघासुर के उद्धार की, ये लीला हुई थी जब भगवान कृष्ण थे 5 वर्ष के, और ग्वाल बालों ने इस लीला को अपने माता पिता से बताया जब भगवान कृष्ण हो गए 6 वर्ष के, 1 वर्ष बाद बताया। राजा परीक्षित ने कहा कि ग्वाल बालों से तो कोई बात गुप्त रह नहीं सकती, 1 वर्ष तक वो क्या छिपा के रखे या कोई और कोई लीला हो गई? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से। श्रोता ऐसा ही होना चाहिए, भक्ता अगर कुछ गुप्त कर जाए या जल्दी में निकल जाए तो श्रोता के मन में लगे कि ये बात क्यों निकल गई। सुखदेव जी ने कहा 5वें वर्ष की घटना ग्वाल बालों ने अपने माता पिता से 6वें वर्ष में बताई। अब प्रश्न तो है इतने दिन तक क्यों नहीं बताई, बीच में क्या हुआ? ये उनको महाराज बड़ा प्रेम था राजा परीक्षित को भगवान की कथा से, क्यों? राजा परीक्षित को कथा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, और हमको आपको 1.5 घंटा कथा के लिए, बाकी बहुत काम है महाराज, बहुत काम है। फिर भी यहाँ दिल्ली जैसी जगह में इतने लोग आते हैं, खुशी होती है, लेकिन फिर भी इतना काम है लोगों के पास, इतने व्यस्त हैं। वो तो बहुत प्रसिद्ध बात है ना, लोगों से कहो चलो कथा हो रही अच्छी सत्संग में चले, अरे महाराज मरने का तो टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं। जैसे धर्मराज आपसे अनुमति लेके आएगा कि आप फुर्सत में हो कि नहीं हो, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो उन्होंने जब पूछा राजा परीक्षित ने, रस में थे, भगवान कृष्ण की लीला में रस आ रहा था। ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवे यत् कौमारे हरि कृतम जगुः पौगंडभिर्भकाः तदब्रूहि महायोगिन परम कौतूहलम गुरु नूनम एतद् हरेरेव माया भवति नान्यथा वयम् धन्यतमा लोके गुरोपि छत्र बन्धवः
यत्तिवामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतम्।
राजा परीक्षित कहते हैं, ब्रह्मन कालांतर कृतम, पांचवें वर्ष में जो घटना हुई उसको छठवें वर्ष में क्यों सुनाया और एक वर्ष में क्या होता रहा? जरूर भगवान ने कोई लीला की होगी। इस एक वर्ष में अगर ग्वाल बालों ने नहीं सुनाया उनको भुला दिया होगा। नहीं, ग्वाल बाल कहाँ मानने वाले, भगवान कृष्ण को भगवान तो मानते नहीं थे। भगवान कृष्ण की तो हर बात प्रतिदिन ग्वाल बाल जशोदा जी से जाके बताते थे। एक साल उनको रोकना तो बड़ा कठिन काम था, मान ही नहीं सकते। और वो भी बच्चे, पांच वर्ष का बच्चा, आपका भी बच्चा हो, आप कितना मना कर दो मत बताना, वो बता ही देगा। बच्चे क्यों, बात रुकती नहीं है और बच्चे कभी झूठ बोलते नहीं। ग्वाल बाल कैसे रुक गए महाराज? जरूर भगवान की कुछ विशेष लीला इसमें हुई होगी। और जो लीला हुई थी वो पहले सुखदेव जी के हृदय में आई। कौन सी लीला हुई थी? वही ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के ले गए थे। एक वर्ष का समय उसमें व्यतीत हो गया था और उस एक वर्ष में भगवान कृष्ण स्वयं बछड़े बने थे और स्वयं ग्वाल बाल बने थे। आप उस दृश्य की भावना करें जहाँ कृष्ण ही कृष्ण हैं, जहाँ कृष्ण ही बछड़े हैं, जहाँ कृष्ण ही ग्वाल बाल हैं, जहाँ कृष्ण ही डंडे हैं, जहाँ कृष्ण ही छीके हैं, सारा दृश्य ही कृष्ण बने हुए। वहाँ पंचभूत नहीं है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ कामना नहीं है, वहाँ अविद्या नहीं है। चिन्मय सृष्टि जहाँ पर है, सच्चिदानंदमय सृष्टि जहाँ पर है। हाँ, जानते हो क्या हुआ? सुखदेव जी की वो घटना पहले हृदय में आई। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया, इत्थम सपृष्टः सतुबादरायणी तत्स्मारिता अनंतहृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिः शनैः प्रत्याहतम् भागवतोत्तमोत्तम। कृच्छ्रात्, जैसे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, वो कृष्णमय सृष्टि जो थी सुखदेव जी के हृदय में आ गई, दिखने लग गई। सारा संसार कृष्णमय, एक जगह भगवान का दर्शन हो जाए तो इतना आनंद आता है। दर्शन में तो आता ही है, जिन संतों को दर्शन हुए हैं और वो दर्शन की स्मृति जब जब आ जाती है तब भी आनंद आता है। जैसे दर्शन होते हैं, क्योंकि वो दर्शन एक विलक्षण भूमिका में होते हैं, वो न जागृत होता है न स्वप्न होता है, वो एक अलग ही भूमिका होती है। व्यक्ति जगा भी होता है और बाहरी ये कोई दृश्य प्रपंच दिखाई नहीं देता, केवल वो होता है और ठाकुर होते हैं, भगवान होते हैं। वो दृश्य की स्मृति जब आ जाती है रोमांच होने लग जाता है। यहाँ तो सारी सृष्टि कृष्णमय है। जानते हो क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज भावावेश में चले गए, समाधि में चले गए, कथा रुक गई। सुखदेव जी की कथा हमारी आपके जैसे नहीं थी कि टाइम से प्रारंभ करना है, टाइम पे पूरा करना है और निश्चय ही कि सुनाना ही है, श्रोता आवे कि ना आवे। यहाँ तो वक्ता बंधन में है, श्रोता मुक्त है। आश्चर्य है ना, वक्ता को तो आना ही है, श्रोता आवे कि ना आवे वो मुक्त है। किसी दिन कोई श्रोता आता, किसी दिन नहीं आता, वो उसकी मर्जी है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले श्रोता का बंधन, श्रोता आएगा, प्रेम से पूछेगा, जिज्ञासु होगा तो ही वक्ता बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलता था। राजा परीक्षित ने इतना सुंदर प्रश्न किया था, सुखदेव जी महाराज को कृष्णमय सृष्टि का दर्शन होने लग गया, भावावेश में चले गए, कथा रुक गई। जब कथा रुक गई, समाधि में चले गए सुखदेव जी महाराज, क्या हुआ? जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब बहुत देर तक वो बोले ही नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन प्रारंभ हुआ। संकीर्तन के साथ साथ सुखदेव जी के ऊपर पंखा झलना प्रारंभ हुआ, जल छिड़कना प्रारंभ हुआ। तब धीरे धीरे सुखदेव जी को बाह्य चेतना आई। आप उस दृश्य की कल्पना करें जहां वक्ता इतना डूबा हुआ है कृष्ण प्रेम में, वो वक्ता बोल नहीं रहा है, वक्ता स्वांतः सुखाय, बोलते बोलते स्वयं डूब जाता है। श्रोता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है उसको पता ही नहीं, भान ही नहीं है। और जागने के बाद सुखदेव जी पहली बात क्या कहते हैं? साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्यों इतना सुंदर प्रश्न क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे प्रश्न के कारण मेरे को ठाकुर जी की दिव्य लीला का दर्शन हो गया। पहले हृदय में आए, हृदय में आने के बाद फिर वाणी में आए, वाणी में आने के बाद फिर श्रोता के हृदय में प्रवेश होता, यही क्रम है। कई लोग कहते हैं महाराज वही बात आपके गुरु जी कहते थे वही हम कहते हैं, लेकिन गुरु जी का प्रभाव बहुत पड़ता था, कारण क्या है? अरे गुरु जी से एक होने के शिष्य ने पूछा था, हमारे गुरु भाई ने, वो प्रवचन करते थे, गुरु जी से पूछा महाराज वही बात आप कहते हैं तो लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और मैं कहता हूं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है? गुरु जी हंसने लग गए, बोले अब इसका कारण तुम ही समझ लो, मैं नहीं बताऊंगा। माने जो वाणी से बोलेगा उसका शब्द खाली श्रोत्र तक जाएगा और जो हृदय से बोलेगा उसका शब्द सामने वाले के हृदय तक जाएगा। हाँ हृदय से बोले तो सही, आप खाली पुस्तक को पढ़ के बोल रहे हैं, आप खाली पुस्तक को रट के बोल रहे हैं या जो पुस्तक में लिखा है उसके साथ आपके जीवन का तादात्म्य है, क्या आपने वो अनुभव किया है? अरे गुरु जी से बंबई में एक श्रोता ने पूछा, आप भगवान कृष्ण के जो लीलाएं सुनाते हैं तो आपने पढ़ के सुनाते हैं या आपने श्री कृष्ण को देखा है? श्रोता तो कुछ भी पूछ सकते। गुरु जी ने कहा देखा है, और ऐसे ही देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं, ऐसे इन्हीं आंखों से देखा है और ऐसे देखा जैसे तुमको देख रहा हूं। तो आज भी ऐसे महापुरुष हैं जिनको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। किस आधार पर लोग कह सकते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं मिलते, भगवान कृपा नहीं करते? सुखदेव जी महाराज पहले राजा परीक्षित की प्रशंसा करते, साधु पृष्ठम महाभाग राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, मेरे हृदय में भगवान की दिव्य लीला का दर्शन हो गया तुम्हारे कारण। भगवान का जो स्मरण दिला दे, भगवान का जो ध्यान करा दे, वो संसार में सबसे बड़ा दानवीर कहलाता है, वही सबसे बड़ा दाता है। भूरिदा जना भागवत में आता है, जो भगवान की कथा सुना दे, भगवान का ज्ञान का दान करे, वही दुनिया में सबसे बड़ा दाता है। क्यों? वो आपके जीवन को भगवान से जोड़ देगा, सबसे बड़ा लक्ष्य है जो जीवन का, उससे मिला देगा। बाकी दान सब दूसरे नंबर पे आते, अन्न दान है, पैसे का दान है, ये सब दूसरे नंबर पे महाराज। और उसके बाद भगवान कहते हैं सुखदेव जी, श्रोष्वावहि तो राजन आप गुह्यम बदामिते, यद्यपि लीला बड़ी गूढ़ है, सबके सुनने लायक नहीं है, लोगों को भ्रम हो जाता है, फिर भी तुम्हारे जैसा प्रेमी को मैं जरूर इस गुह्य लीला को सुनाऊंगा। बोले क्या हुआ? जब अघासुर के मुख से बाहर निकल आए और उधर अघासुर का जब शरीर पूरा हुआ, उसकी दिव्य ज्योति भगवान के शरीर में समा गई, देवता लोग अघासुर से बहुत घबराते थे, बहुत डरते थे, तो देवता लोगों ने बड़ा संगीत प्रारंभ किया वृंदावन की जमुना पुलिन पर, और वो संगीत इतना मधुर था कि ब्रह्मा जी भी अपना ब्रह्मलोक छोड़ करके संगीत सुनने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े, ब्रह्मलोक छोड़ के। ये संगीत साम वेद से ही तो निकला, ये भी तो एक वेद का स्वरूप है। अगर आप ठीक ठीक संगीत की साधना हो तो संगीत भगवान को प्रकट कर सकता है। हरिदास जी के संगीत ने ही तो बांके बिहारी को प्रकट किया, संगीत की साधना ने, संगीत। लेकिन वो संगीत दुनिया के लिए नहीं था, हरिदास जी का संगीत था ठाकुर के लिए, और ठाकुर के लिए गाते थे, ठाकुर के लिए ही उनका संगीत होता था। मीराबाई का संगीत, सूरदास का संगीत, हरिदास जी का संगीत, ये भी तो संगीत था ना। वो महाराज भगवान को प्रकट कर दिया, तो अभिप्राय संगीत सुनने के लिए ब्रह्मा जी उधर से आ गए थे वृंदावन, और इधर ग्वाल बालों को लगी थी भूख, घर से बाल भोग लेके आए थे, अभी तक बाल भोग हुआ नहीं था, बहुत सारा समय निकल गया, अजगर के मुख में घुस गए, भगवान गए, उसका उद्धार हुआ। 10-11 बज गए दिन के, भूख लगी हुई थी। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तुम्हारी लीला ही चलती रहेगी या कुछ खाने को भी मिलेगा? आज घर से भी नहीं खाने दिया। वो ग्वाल बाल तो जानते नहीं थे कि भगवान है, वो तो जैसे एक मित्र है, सखा है। भगवान मुस्कराने लग गए, बोले बोले अभी 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 खाते। ओ तिरम्यम पुलिनम वयस्याः बोले जमुना जी का जो पुलिन है ना बड़ा सुकोमल है, चलो यहीं बैठते हैं अपने। सुकोमल कैसे है? जमुना जी के बालू बड़ी कोमल होती, आप देखेंगे इतनी कोमल किसी नदी की बालू नहीं मिलेगी आपको, न गंगा की मिलेगी और माँ नर्मदा जी में तो बालू बहुत कम है, पत्थर ज्यादा है। जमुना जी की बालू इतनी कोमल है, इतनी सुकोमल है, आप आराम से बैठें, न कोई कंकड़ है न पत्थर है। और एक बात और है, जमुना जी के बालू को अगर आप ध्यान से देखें तो आधी बालू गौर वर्ण की है और आधी बालू श्याम वर्ण की है। बोले ये कैसे हुआ? बोले भगवान की जब रासलीला हुई ना, प्रकृति भी इतनी तन्मय हो गई थी रासलीला में, क्योंकि भगवान सांवरे थे और राधा रानी गोरी थी, गोपियां गोरी थी, इसलिए आधी बालू सांवरी हो गई और आधी बालू गोरी हो गई, भगवान के रासलीला का प्रभाव था, वो दिव्य लीला का प्रभाव। बोले उस बालू में बैठ करके अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, भगवान ने कहा ग्वाल बालो यहीं बैठ जाओ और हम लोगों को बाल भोग प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, 3 दिन हो गए भाई, बाल भोग प्रारंभ तो होना चाहिए ना बन भोज लीला में। बोले बाल भोग अब प्रारंभ करना चाहिए, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, अब हमको यहाँ भोजन करना चाहिए, क्षुधार्तिता भूख लग गई है। बोले बछड़ों को क्या करें? बोले बछड़ों को छोड़ दीजिए, जमुना जी का जल पिएंगे, घास खाएंगे, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, पूरा वृंदावन वृंदावन था उस समय वृंदावन। और उस समय क्या 20-25 साल पहले तक भी वृंदावन वास्तव में वृंदावन लगता था, लेकिन आज अगर आप जाएं तो जो पुराना वृंदावन है वो तो वृंदावन लगता है, बाकी छठी करा से जो वृंदावन के बीच की जगह है वो तो आगरा और दिल्ली जैसे लगती है बिल्कुल, बहुत ज्यादा महाराज। हाँ, अब उसको विकास कहें या जो भी कहें वो तो आपकी धारणा है। एक संत कहते थे, बोले महानगर का अर्थ क्या होता है? बड़े विनोद में, अभी मैं कुंभ में था तो वो बोले, बोले महानगर माने जानते हो क्या होता? मैंने भाई महानगर जहाँ विशेष है, दिल्ली कलकत्ता बम्बई महानगर। बोले महानगर का मतलब होता है जहाँ हवा शुद्ध ना मिले, जहाँ पानी शुद्ध ना मिले, जहाँ भोजन शुद्ध ना मिले और जहाँ आदमी शुद्ध ना मिले, उसका नाम महानगर होता है। और बात सही है, आप चाह करके भी ऑर्गेनिक खोज रहे हैं लोग, ऑर्गेनिक फल मिल जाए या अन्न मिल जाए, गेहूं मिल जाए, नहीं मिलता है। आप महाराज खेत का खा के देखो, इतना रस आएगा उसमें। और अभी मैं जबलपुर था, या हमारे वृंदावन में जो खेतों में सब्जी लगती है गोपालगढ़ में, वहां पर आप देखें उसमें एक विलक्षण मिठास होती है, गाजर हो, मूली हो, सब्जी हो, आप यहाँ पैसा दे के भी वो नहीं पा सकते, क्या करेंगे? आप वहाँ गोपालगढ़ में जाएं, जबलपुर में जाएं, रात्रि में आकाश में इतने तारे दिखाई देते हैं, दिल्ली में तारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। कितनी भी रात हो जाए, अमावस्या की रात्रि में भी यहाँ तारा दिखाई नहीं देते, क्यों? प्रदूषण, वायु में प्रदूषण है, कालापन है, क्या करेंगे? तो अभी प्राय क्या है, भगवान ने कहा कि ये तो शुद्ध वृंदावन है, बछड़ों को छोड़ दो, हम लोग बैठते हैं और यहीं पर भोजन करेंगे बैठ करके। भगवान मध्य में बैठ गए और मध्य में बैठ करके चारों तरफ मंडलाकार में सब ग्वाल बाल बैठ गए। ग्वाल बालों से कहा, भाई जो जो बाल भोग लाए हो अपना अपना निकालो, जो जो आप लोग लाए। अब किसी ने तो अपने कपड़े में ही रख लिया, किसी ने पेड़ के पत्ते में रख लिया, किसी ने पत्थर की शिला में रख लिया, ये सब पवित्र वस्तुएं निकाला। अब महाराज जैसे भोजन प्रारंभ हुआ ना, ब्रह्मा जी तब तक आ गए थे, अब इतने ग्वाल बाल, इतने बछड़े और इतने सुंदर बछड़े, इतने सुंदर ग्वाल बाल, हृष्ट पुष्ट माखन के खाए हुए, सांवरे और गोरे, ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए। उनको लगा जो मैंने सुना था ये भगवान है, लगता वही है। अब ये भी देखो एक आश्चर्य की बात है, ये वही ब्रह्मा है जो गर्भस्तुति के समय कंस की कारागार में स्तुति करने गए थे। ब्रह्मा जी गए थे, शंकर जी गए थे, इंद्र गए थे, उनको मालूम था कि भगवान अवतार ले रहे, उनको यह भी मालूम था कि वही भगवान मथुरा से नंद बाबा के आए, और आज वही ब्रह्मा 5 साल के तो हुए भगवान, 5 साल बाद उन्हीं भगवान को ब्रह्मा जी नहीं पहचान पा रहे, यह है भगवान की माया। इसलिए कहा जाता है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, बड़ा कठिन है भगवान की माया को पार करना। बोले कठिन है तो कोई उपाय है? बोले एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो तो माया से छुटकारा मिल जाता। और कोई माम एव एव जो है सारे साधनों की व्यावृत्ति कर देता है बिना भगवान की शरणागति से। भगवान के अगर ब्रह्मा जी के पीछे माया लग सकती है, ब्रह्मा जी अगर भगवान को भूल गए, ब्रह्मा जी को संदेह हो जाता है कि भगवान है कि नहीं। क्यों क्यों संदेह हुआ? भगवान कृष्ण एक तो दोनों हाथों से खा रहे थे, जो कि शिष्टता नहीं, बच्चे हैं, बाल लीला में सब मान्य है, लेकिन ये बड़ों का काम नहीं है। अगर आप लोग कोई दोनों हाथों से खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए, वो अशिष्टता है। एक हाथ शुद्ध रखना चाहिए, एक हाथ से खाना चाहिए, और वो भी दाहिने हाथ से खाना चाहिए, हाँ बाएं से नहीं। और महाराज जूठा नहीं खाना चाहिए, जूठा एक दूसरे का जो जूठा खा लेते हैं ना, हाँ जूठा। एक जगह मैं यहाँ किसी के घर पे गया था भोजन के लिए, चौधरी उनका सर ने, मैं नाम नहीं लूंगा इतना ही ठीक है, पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज थे उस समय, उन्हीं के साथ गया था। अब वो स्वयं भी बैठ गए भोजन में, उनके परिवार के लोग भोजन परोस रहे थे, बीच में टेबल में रोटी रख दी। और पहली बात तो चौधरी साहब दोनों हाथों से खा रहे थे, और मेरे जब थाली की रोटी खत्म हो गई तो उसी हाथ से उठा के मेरी थाली में रख दिया। तो मैंने भोजन बंद कर दिया। चौधरी जी बोले महाराज लीजिए, आज तो बहुत कम खाया आपने। मैंने कहा आज भूख नहीं है ज्यादा। मैंने अब उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हम दोनों हाथों से खा रहे हैं तो जूठा हो गया, और उसी हाथ से वो एक महात्मा की थाली में भी रख रहे। बाद में उनको पता लगा, बड़ा संकोच हुआ। तो ये गलत पद्धति है। और आजकल जो विवाह शादियों में जो पद्धति चल पड़ी है ना, महाराज उठाओ खाओ वाली पद्धति, जिसको आप बूफे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जूता पहन के खाते हैं, चप्पल पहन के परोसते हैं, और फिर कहते हैं महाराज हमारा साधन भजन में कुछ प्रगति नहीं हो रही। प्रगति कहाँ से होगी? जहाँ अनुष्ठान में लिखा है कि जब करते समय अगर कान में हाथ लग जाए, नाक में हाथ लग जाए, पैर में हाथ लग जाए, तो हाथ धो करके पुनः माला जप प्रारंभ करो। वहां आप जूता चप्पल पहने घुस जाते हो, पूजा रूम में भी चप्पल पहने घुस जाते, रसोई घर में चप्पल पहने घुस जाते, और अगर बोलो भाई चप्पल उतार दो तो वो महाराज रीजन देते, कारण बताते। बोले महाराज ये तो रसोई घर की चप्पल है। मैं कहता हूँ चप्पल तो चप्पल ही होती है, कोई फलहारी चप्पल तो नहीं होती ना। चप्पल तो चप्पल है, जब पैर छूने से अशुद्धि हो जाती है, कान छूने से अशुद्धि हो जाती है, तो चप्पल पहनने से क्यों नहीं होगी? हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जब तक हमारी एजुकेशन में नहीं आएगा, वो बच्चों को समझ में नहीं आती महाराज। तो भगवान कृष्ण बच्चे थे, बाल लीला थी, वो यही कर रहे थे एक्चुअली। एक तो दोनों हाथों से खा रहे थे, और जिस ग्वाल बाल के बाल भोग में अच्छी वस्तु होती थी उसका उठा के छीन के खा लेते थे। ब्रह्मा जी को लगा ये तो एक सभ्य मनुष्य भी ऐसा नहीं करता है, ये भगवान है, और ये धर्म का उपदेश देने के लिए इन्होंने अवतार लिया है, ये भगवान नहीं हो सकते। आ गई ना माया, ये भगवान नहीं हो सकते, ये एक सामान्य मनुष्य जैसा भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते? ये धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं, ये स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये जब उनके मन में आया, उन्होंने योजना बनाई, परीक्षा करूंगा, अगर ये भगवान होंगे तो पता लग जाएगा, भगवान नहीं होंगे तो पता लग जाएगा। अब वो क्या योजना बनाते हैं ब्रह्मा जी, और भगवान के साथ उनकी क्या लीला होती है, बड़ी सुंदर दिव्य लीला है, इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे, आज का समय पूरा हो रहा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद ही जाएंगे।
गोविंद घरे गोपाल घरे जय जय प्रभु दीन दयाल घरे, गोविंद घरे गोपाल घरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। जय प्रभु दीन दयाल हरे।
आनंद की जय जय श्री।